का रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। अपना वचन निभाने को, धर्म स्थापना करने को, धर्म समूल मिटाने को, आत्म बंधन मुक्त कराने, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम
शांति। आज का टॉपिक है नया जीवन नया नशा। दुनिया में जीवन के लिए डार्विन का सिद्धांत मानते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और अस्तित्व के लिए संघर्ष करना जरूरी है, लेकिन बाबा ने आके जीवन की नई परिभाषा बताई कि जीवन क्या है। तो हमारा जीवन कैसा है? अलौकिक जीवन है। कि दुनिया के जैसे लौकिक जन्म होता है वैसा नहीं, अलौकिक ही। स्वयं भगवान ने आकर ब्रह्मा मुख द्वारा हमारा जन्म लिया और हमारा जीवन जन्म दिया और विचित्र जीवन है। कि हमारा जीवन विचित्र है, जैसे कि दुनिया में सबका कि बर्थ डेट, मैरिज की डेट, एंगेजमेंट की डेट, सब डेट अलग अलग होती है, लेकिन हमारी यहाँ एक ही है कि जब से बाबा मिला हमें पहचाना तो वही हमारा जन्मदिन हुआ और उसी दिन बाबा से सगाई करके शादी हो गई। और हमारा यह जीवन श्रेष्ठ जीवन है, अमूल्य है, वैल्यूएबल है, क्योंकि इसी एक जन्म में हमें 81 या 84 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। और एक बाबन का ये जीवन अवतरित जीवन है। कि हमें कैसे समझना है कि हम कार्य के लिए अवतरित हुए और कार्य करके चले गए, और ये जीवन सदा खुशियों में रहने का, खुशियों में नाचने का जीवन है। तो लौकिक में जैसे बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं, उसकी खुशी मनाते और जन्म पत्र निकालते हैं। तो उस पर एक मुरली है, अलौकिक जीवन पत्री, अलौकिक जीवन पत्री। तो उसमें 5 बातें देखते हैं, स्थिति, समय, रेखाएं, दशा और राशि। तो स्थिति तो बावन का हमें कौन सी स्थिति देखनी है कि हम जब से ब्राह्मण बने तब से हमारी स्थिति कैसी रही, उस स्थिति से अनुसार भविष्य की प्रारब्ध बनेगी। दूसरा है रेखाएं। तो रेखा में बाबा ने कहा कि कर्म की रेखाएं और सूक्ष्म संकल्प की रेखाएं, कि जब से ब्राह्मण बने हैं तब से हमारे कर्म कैसे हैं और संकल्प भी कैसे चलते हैं, उस अनुसार भविष्य प्रारब्ध बनेगी। तीसरा है समय। तो उसमें बाबा ने कहा है कि मान लो कि कोई 35 साल से ज्ञान में है लेकिन पुरुषार्थ इतना नहीं है, तो उसका जास्ती समय वालों में गिनती नहीं होगी। और दूसरा, जो 15 साल से ज्ञान में है और उसने 15 साल पुरुषार्थ किया तो उसकी 15 साल वालों में जास्ती में गिनती होगी। नो, फिर आगे है कि लोग दशा देखते हैं कि जब जन्म हुआ तब कौन सी दशा है, तो हमें भी देखना है कि सदा बृहस्पति की दशा रहती है या बीच बीच में राहु केतु की दशा आ जाती है। फिर आगे देखते हैं राशि, तो राशि में बावन का यहाँ हमारी 3 राशि है, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे की। तो हम देखना है कि हम सदा एक रस रहते हैं कि महारथी से घोड़ेसवार और फिर प्यादे चले जाते और फिर वापस महारथी बन जाते। तो बावन का ऐसे होगा तो जो 21 जन्म में कभी उच्च पद मिलेगा और कोई जन्म में दास दासी बनना पड़ेगा। तो ये सब अब हम नया जीवन है देखेंगे। तो नया जीवन का फाउंडेशन की आधार क्या है, तो इसमें अभी बावन बताए नया जीवन का आधार है पवित्रता, और दूसरा बताया था रूहानी दृष्टि और रूहानी वृत्ति। तो पवित्रता के लिए एक मुरली में है कि इस ब्राह्मण जीवन का जो पवित्र संकल्प है वो बुद्धि का भोजन है, पवित्र दृष्टि आंखों की रोशनी है, पवित्र कर्म ब्राह्मण का धंधा है, और पवित्र संबंध और संपर्क ये ब्राह्मणों की मर्यादा है। तो ये ब्राह्मणों का पवित्रता। फिर दूसरा है कि इस ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि, कि स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। फिर इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। इस ब्राह्मण जीवन का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। सारे मुरली के ही टाइटल है, अव्यक्त मुरली के, कि मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी और मुख्य धंधा है समर्पण करना और समर्पण कराना। फिर आगे कि ब्राह्मण जीवन का जो सुख है वो है संतुष्टता और प्रसन्नता। फिर ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग और उत्साह। और फिर ब्राह्मण जीवन का पर्सनालिटी है प्योरिटी। पर्सनालिटी एक मुरली का टाइटल है, पर्सनालिटी है सदा प्रश्न से पार रहना, सदा प्रसन्नचित रहना। खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। फिर सौगात में बाबा ने बोला था कि बाबा भी हमें जो सौगात देते हैं विश्व की बादशाही, और हमें जो इस नए जीवन में बाबा को सौगात देनी है कि काम काज करते हुए सदा याद रहे मेरा बाबा, मीठा बाबा और स्नेह का संबंध रहे। तो ये है बाबा की सौगात। फिर इस जीवन की जो निशानी होगी सदा खुशी में रहने वाले। फिर इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता, तो इस पर भी एक मुरली, इसमें 3 विशेषता बताई, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा और ब्रह्मा बाप समान अलौकिक फरिश्ता। फिर ब्राह्मण जीवन मिला तो उसमें जो भाग्य की लकीर है, तो 4 भाग्य की लकीर है। एक तो दिव्य जन्म, परमात्म स्नेह, परमात्म मिलन और निस्वार्थ सेवा। इस ब्राह्मण जीवन की जिम्मेवारी, एक तो हो गया विश्व का परिवर्तन करना, और दूसरी जिम्मेवारी बाबा ने बताई कि हम इस स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और दूसरा बताया कि हम अभी जो भी कार्य करते हैं वही भक्ति मार्ग में उसकी गायन होती है। तो उसमें लिखा है कि विधि के विधान रचने वाले हैं, तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है तो अलबेलापन नहीं होना चाहिए। फिर ब्राह्मण जीवन का संसार, संसार है एक बाबा और संसार है बेगमपुर, कि ब्राह्मण जीवन का संसार बेगमपुर। फिर आगे है कि ब्राह्मण के बाबा की आस क्या है हम बच्चों से इस जीवन में, तो बाबा की आस है कि बच्चे भी ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बन जाए। फिर इस जीवन के गुण और कर्तव्य के, इस पर भी एक पूरी मुरली है, ब्राह्मण जीवन के गुण और कर्तव्य, तो उसमें गुण बताया है बाबा ने मास्टर नॉलेजफुल, और कर्तव्य है विश्व की सेवा करना, विश्व को परिवर्तन करना। उसमें बाबा ने लक्षण बताए कि जो सच्चे विश्व सेवाधारी होंगे उसमें एक ही लगन होगी कि हमें सेवा करना है, वो कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं निकालेंगे कि हमें चार, अभी जो 16 प्रिंसिपल बताया वो फॉलो करेंगे पूरा एक्यूरेटली, और उसमें ऐसा टाइम फिक्स नहीं करेंगे कि 4 घंटा सेवा करनी 6 घंटा सेवा करनी, उसकी दृष्टि वृत्ति समय संकल्प से सदा ही सेवा करते रहेंगे। तो उसमें 4 लक्षण बताया कि उस स्मृति से सदा सर्व आत्माओं को समर्थ बनाएंगे, वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाएंगे, दृष्टि से स्वयं और बाप का साक्षात्कार कराएंगे, और कर्म से दूसरों को भी श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देंगे। अबे नया नशा जन्म था ब्राह्मण कुल, इस जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता, कि बाबा उनका मेन स्वतंत्रता, तो जो देहबान है और उस देह के संबंध से स्वतंत्र रहना, ये ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, तो श्रृंगार है 16 श्रृंगार है, श्रृंगार है स्मृति वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता, की पवित्रता, फिर दिव्यता रूहानियत, ये सब ब्राह्मण जीवन की श्रृंगार है। फिर वरदान, तो ब्राह्मण बनते ही बाबा मुख्य 2 वरदान देते हैं, सहज योगी भव और पवित्र भव, और दूसरे भी वरदान के ऊपर एक मुरली है कि स्नेह की शक्ति का वरदान बाबा सबको देते हैं, जिसमें सब पास है और इससे सब आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, दिव्य नेत्र, अब ब्राह्मण जीवन में नशा, तो सबसे पहली बात कि जिसको हम इतने जन्म से ढूंढ रहे थे वो भगवान ही हमें मिल गया, भगवान ने ही हमको ढूंढ लिया, जो भगवान की नजर हम पर जब तक पक्का ना हो जाए तब तक रोज तो वो भी एक है कि, तो उसके हमने पूरी दिनचर्या में लिया है कि जब सुबह उठते ही कौन उठाता है हमें, भगवान उठाता है, तो वो भी नशा रहना चाहिए कि भगवान आकर हमें उठाता है। दुनिया में भी जैसे मिनिस्टर राजा के बच्चे होते हैं तो उसको कितना नशा रहता है, तो हमारा बाप तो स्वयं भगवान है, फिर आगे की हमको पढ़ाने वाला भी स्वयं भगवान है, जो टीचर बनकर हमको पढ़ाने आता है। एक भगवान से ही सर्व संबंध का सुख मिलता है, एक भगवान से ही सर्व संबंध का सुख का अनुभव करना, खजाने की प्राप्ति होना, और सारा दिन उसकी छत्र छाया उसके साथ रहना, और दिन में अलग अलग संबंधों से अनुभव करना। हमने बाबा को एक संबंध से बड़ा अनुभव किया, हमने बाबा को स्टूडेंट बनाया था बनाया था, पढ़ते थे तो पढ़ने में मजा नहीं आता था 5 साल तक, फिर मैं उसको बोलती थी कि आज आप पढ़ तू भी तो बाबा को ऐसे अलग अलग संबंध से दिन में अनुभव करना है। फिर हमने एक पढ़ा था कि शांतामणि दादी ने बताया था कि ब्रह्मा बाबा बच्चों से पूछते थे कि तुम्हें बेहद की खुशी, कि कापारी खुशी रहती है कि भगवान तुम्हें मिला है, जो अभी तुम्हारा भगवान से मिलन हो रहा है, जो सत्युग में भी नहीं होगा, तो तुम्हें एडी से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। फिर दीदी मनमोहिनी का पढ़ा था तो उसने बताया कि ब्रह्मा बाबा कैसे सदा नारायणी नशे में रहते थे, तो उसने बताया कि बाबा जब भविष्य में चले जाते थे कि कृष्ण का रूप, तो जब स्वयं को मिरर में दर्पण में देखते थे तो बोलते थे कि मैं तो बूढ़ा हूँ, ये कैसे हो सकता, मैं तो श्री कृष्ण हूँ। फिर आप बताओ नशे के बाद। नहीं, जैसे हम ज्ञान में आए तो फिर डे स्कूल में जाते थे, पूरा दिन पढ़ना होता था, सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे, शाम को 8 बजे वापस आते थे। तो फिर मैंने दीदी से पूछा वहाँ कि अब मैं तो पूरा दिन पढ़ती हूँ तो बाबा को कैसे याद करूँ पढ़ते पढ़ते, तो उसने बोला कि जो भी पढ़ते हो बाबा को सुनाना। तो फिर तब से तो मैंने फिर बाबा को बोला कि अब आप भी आ जाओ, और कभी कभार बोल भी देती थी कि एग्जाम में थोड़ा याद भी दिला कि एग्जाम में थोड़ा याद भी, तभी तो पास हो गए कम पढ़ते हैं। एक फोटो रखा था मैंने अभी मेरे पास, तो उसको मैं रखती थी सामने, ब्रह्मा बाबा का है, उसको मैं देखती थी कि ये इसमें बाबा आते, और मैं उनको सब पढ़ाती थी। फिर जैसे पढ़ने में ऐसे बोलते हैं कि दो लोग साथ में पढ़े दूसरों को सुनाए तो वो जल्दी याद रह जाता है, तो ऐसा करके मैं फिर बाबा को सब सुनाती थी कि आज ये इतना पढ़ा ये पढ़ा वो सब सुनाती थी ऐसे। हाँ, कभी कुछ समझ में ना आए तो मैं पूछती थी कि ये समझ में नहीं आई अब ये बात समझाओ, तो फिर किसी ना किसी थ्रू वो समझ में मिल जाता था। स्वप्न में नहीं आया कभी आज तक। तो जीवन का जैसे नया जीवन का सुना तो मैंने सब बताया कि इस एक ही जन्म में 4 बार जन्म हुआ है, 4 बार बताती हूँ कैसे। सबसे पहला जैसे सबका होता है माँ के गर्भ से जन्म होता, तो उस वक्त भी जब जन्म हुआ तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन वगैरह सब कुछ हुआ था, तो उस वक्त भी डॉक्टर ने कंसेंट ली थी, मम्मी ने बताया था कि जिंदा नहीं रहेगी। फिर आके भी सब बताते थे ऐसे जो आंटी वगैरह है कि 2-3 मिनट बाद में रोई थी, तुरंत नहीं रोई थी, तो डॉक्टर ने बता दिया है मेंटली रिटायर्ड बनेगी आगे जाके। फिर बोला था कि 5 साल तक जिंदा रहेगी तो ही फिर आगे पूरा तो फिर तो वो एक पहला जन्म। फिर दूसरा जन्म जैसे अलौकिक जन्म हुआ, तो दूसरा जन्म में भी सबसे पहले मम्मी ज्ञान में आई, तो वो मुझे बोलती थी कि कोर्स करना, वो उसने ऐसा बताया था कि हम आत्मा है और परम धाम में रहते हैं, तो ऐसे मैं कभी कभार बोला करती थी ऐसे बीच बीच में कि आत्मा हो, ऐसा समझ में कुछ नहीं आता था। 15 साल की होगी। तो फिर ऐसे बोला कि कोर्स कर लो, तो मैं तो सोचती थी कैसा कोर्स होगा, जैसे कोई कंप्यूटर का इंग्लिश का वगैरह कोई कोर्स करते ऐसा कोई कोर्स होगा, और सिर्फ गुरुवार के दिन जाती थी, मैं इंतजार करती थी गुरुवार आए भोग खाने के लिए। तो ऐसे 1-1.5 साल तक गई होगी सिर्फ गुरुवार के दिन ही। फिर कोर्स किया, लेकिन इतना कोई कोर्स में मुझे दो बातें समझ में आई, एक तो आत्मा का और ड्रामा का, कि ड्रामा हम पहले भी ऐसे ही टेंशन तो कोई लेते नहीं थे, ऐसे ही जीते थे कि जो और अच्छे से ले, कोर्स किया तो ये बात तो और भी थोड़ा बहुत था, वो भी चला गया। एक प्रश्न रहता था हर रोज कि ये ब्रह्मा बाबा ही क्यों कृष्ण, तो मैंने इस बात में दीदी को बहुत परेशान किया है। तो उसमें मैंने दीदी को बहुत बार पूछा, फिर उसने कैसे भी करके समझा दिया। फिर एक दिन मम्मी ने बोला कि हमारा जन्मदिन था, तो बोला कि आज मुरली क्लास में चलो, तो फिर उस दिन हम शाम को मुरली क्लास में गए, तो उस दिन भी मुरली में वो वाली बात आई थी जो बाबा भैंस का एग्जांपल देते कि एक व्यक्ति को बोला कि तुम भैंस हो, तो बोला कि दरवाजा से बाहर नहीं निकल सकता, तो ऐसे आत्मा का पाठ पक्का करना है। तो फिर 7 से 7.5 का योग किया, योग में क्या किया वो पता नहीं है, लेकिन जो अनुभव हुआ वो आज तक नहीं हो रहा है, कितनी भी ट्राई की ज्ञान कुछ नहीं था उस वक्त, वही तो नहीं समझ में आ रहा है। तो वही तो नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि वो, तो फिर ऐसा लगा कि जो भी है वो यही है, यही है। भक्ति बिल्कुल नहीं की थी, कुछ पता ही नहीं था शास्त्र के ज्ञान के बारे, वो भी नहीं पता था कि दुनिया वाले ऐसे मानते कि गीता का भगवान कृष्ण है और या के सब। कोई मम्मी कभी कभार उपवास करने को बोलती थी, दूसरे के घर में जाकर खाना खा लेती थी। तो भक्ति तो बिल्कुल की ही नहीं थी। तो हम तो भाव को भी बोलते कि वो भी शुक्रिया, सीधा जो ज्ञान मिला वो, ये सीधा ज्ञान मिला। फिर दूसरे दिन से रेगुलर क्लास शुरू कर दी, 6 से 7 मुरली होती थी, कभी मुरली पूरी होती थी कभी नहीं होती थी, 7 बजे की स्कूल थी। तो ऐसे पहला जन्म हुआ, फिर जाके चेंज आया, हॉस्टल में पढ़ने गया गांधीनगर। तो 6-7 महीने तो ठीक ठाक चला, फिर धीरे धीरे बाबा बोलते वो भी हो गया, शंका रंग लग गया। बाबा को बोला अब छुट्टी, तो 1-1.5 साल तक बाबा को पूरा छोड़ दिया था, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा से जो तलाक बोल कि 1-1.5 साल तक छोड़ दिया था, क्योंकि हम जो जात नया सिटी था तो इतना पता भी नहीं था, थोड़ी मुरलियां लेकर गए थे, दो रोज मुरली सुनने जाते थे, तो वही था कि मुरली सुनते थे, सेंटर से अच्छी पालना मिलती थी वो देखकर तो जाते थे रोज। वहां गए नए सिटी में, मुरली बंद हो गई, जो वहां खान पान की धारणा भी पक्की हो गई थी वो भी जाके भंग हो गई हॉस्टल में। तो बाबा को बोला अब तू भी फिर ऐसे हम फ्रेंड के घर घूमने के लिए नड़ियात गए थे, तो वहां रात को 11:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ था, बाबा मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हमारी ये गलती थी, ट्रिपल में एक्टिवा जा रहे थे वो भी रॉन्ग साइड में, तो एक्सीडेंट हुआ। तो मुझे तो इसको भी हम एक्सीडेंट के बाद का जो जीवन है उसको तीसरा जन्म मानते हैं। एक्सीडेंट जो हुआ हम कुछ याद नहीं, मुझे एक्सीडेंट के पहले का 1 घंटे का कुछ याद नहीं है कैसे एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद का 2 दिन का याद नहीं है। तो सब मैं चला रही थी, तो तब जाके हुआ। तो सब बताते ऐसा कि वहां तो रात के 11:30-12 बजे हुआ था एक्सीडेंट। तो फिर ले गए, तो डॉक्टर ने वहां ऐसा ही बोला था कि ब्रेन हेमरेज होगा, ये वापस बोल दिया कि जाएगी। फिर सीधा अहमदाबाद जाने को बोला, पर नहीं हुआ, सिटी स्कैन सारा नॉर्मल आया। सब बोलते 2 दिन सबको, मैंने सब ऐसा बताते कि बहुत परेशान किया है सबको, जैसे आईसीयू में पेशेंट करते है उसको, बहुत सारे दिए थे, बोलते हैं कि 7 से 8 मिडास का डोज दिया था, फिर भी ठीक नहीं हुई, बहुत कुछ किया है उस वक्त, पर हमें कुछ याद नहीं है वो 2 दिन का। फिर जाके जब शिफ्ट कर दिया था रूम में, तब जाके थोड़ा लगा कि कहाँ पर हो, फिर पूछा तो सबने बताया। तो जो 2 दिन में हुआ उसके बाद हमें ऐसा लगा कि बाबा को वापस पकड़ लिया बाबा को। उस टाइम में ऐसा हुआ भी बहुत था कि नहीं, हम तो वो भी बाबा को शुक्रिया करते कि अच्छा हुआ कि वो भी जीवन, वो भी दुनिया बता दी, तो अब जाके उसमें जाने का मन ना कर रहे कि वो दुनिया किया है। वो दुनिया भी पूरी देख ली, सब कुछ किया, होटल का खाना, सिनेमा देखा, सब कुछ कर लिया था वो 1.5 साल में। तो बाबा को बोला अच्छा किया, चलो ये भी तो नहीं देखा। तो हुआ था भी बहुत। तो जैसे ही हम फिर वापस गए, तब हमें सूरत शिफ्ट भी हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, सेंटर का पूरा छूट गया था, तो सारा छूट गया। फिर जैसे ही पकड़ा कि बाबा को वापस पकड़ना है, तो वापस जामनगर शिफ्ट हो गए। बेड में नक्की कर लिया था कि वापस बाबा को पकड़ना है। तो हमने जब, हमें ऐसा लग गया था, तो हम एक दिन जब जामनगर गए थे ना, तब हमने दीदी को बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाबा को छोड़ दूंगी, क्योंकि कुछ जो हो रहा था अमृत वाला नहीं हो रहा था, मुरली नहीं पढ़ते थे तो पता ही चल गया था। तो दीदी ने उस वक्त बोला था कि कहाँ भी जाओ बाबा वापस तुझे ले आएगा। तो तब जाके फिर हम वापस गांधीनगर गए पढ़ने के लिए। तो मेरी दीदी सामने ही बैठी है, जो मिली थी तो वो हमको मार्केट में मिले, ऐसे ही वो पूरे 1.5-2.5 साल में कभी नहीं मिले, जब तक पढ़े उस वक्त चले। तो फिर मिले मार्केट में, तो पहचान हुई, तो फिर से सेंटर जाना शुरू हो गया। और उस वक्त से हम फिर व्हाट्सएप में भी ग्रुप मिले थे 2-3, तो उसमें भी सेवा मिली थी, तो वो भी सारा हो गया। तो जैसे अव्यक्त मुरली का जो सब कुछ कर रहे हैं अभी प्रोजेक्ट का, तो उसमें सेवा चल रही थी, तो वो भी सेवा का हो गया, सेंटर जाने का भी हो गया। फिर इसी बीच हम उसमें भी एक बड़ा पेपर आया था कि हमारा 28 अप्रैल को एक्सीडेंट हुआ था, और हॉस्टल में हम 12th या 13th को गए थे, 17th मई को मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, उसने बोला कि आज होटल का खाना पड़ेगा, कि आज खाना पड़ेगा कि कल से ले लेना ना जो भी व्रत है तेरा। फिर वो 8-10 लोग थे तो ऐसा बताते थे कि ऐसा तो कौन सा तुम्हारा बाबा है जो दिखता भी नहीं कुछ नहीं, इनको एक को खुश करने के लिए हम 8-10 लोग को परेशान कर रहे हैं। तो उस वक्त तो उस वक्त बड़ा हुआ। तो मैंने पूछा अब करे तो क्या, उस वक्त दीदी का फोन ना लगे। फिर उस वक्त मैंने बाबा को बोला आज तेरा पेपर, अब तूने वापस पकड़ा है 15 दिन, अब पकड़ के रखना है, तो आज तू कुछ भी कर, मुझे होटल का नहीं खाना है, जो वो सब लोग मान जाएंगे तो जो तेरा पकड़ा है वो पकड़ के रखूंगी वरना छोड़ दूंगी। वो बाबा को पता। तो वैसे ही पूरा दिन तो वो लोग नहीं माने, जो होटल में भी गए थे तो होटल वालों ने भी बोला यहाँ जैन खाना भी मिलता है, तो मैंने बोला मुझे नहीं खाना है, तो जिसका बर्थडे था उसने तो बोला कि चलेगा अब तू नहीं खाएगी। तो उस दिन से फिर बाबा को जोर पकड़ा तो था, पक्का कर लिया, जोर से पकड़ से बाबा ने पकड़ लिया उस दिन से। चौथा भी बताऊंगी। फिर इसी वक्त तीसरा था, इसी वक्त पांडव भवन में आए थे हम, तब तब बाबा को बोला कि अब खान पान की धारणा भी चाहिए और मुरली क्लास भी करना है, कैसे करना वो तू जाने। तो जाके हम घर वापस चले गए गांधीनगर, तो वहां से ही दीदी ने बताया कि एक माता है जो तुझे रोज टिफिन बना कर देंगी, तो उसके लड़के या लड़के जो थे वो मुझे हर रोज हॉस्टल पे टिफिन दे जाते थे, और एक युगल था जो मुझे हर रोज हॉस्टल से ले जाते थे सुबह क्लास करने और वापस छोड़ जाते थे। तो ऐसे फिर से सब कुछ बाबा ने व्यवस्था कर दी अपने आप। फिर जो चौथा जन्म है वो मैं यहाँ आने के बाद का जन्म मानती हूँ, कि वैसे वहां रह रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करते थे। अमृत वेला हुआ तो ठीक, कोई कोई बार नहीं होता था तो ऐसे ड्रामा कर कर छोड़ देते थे कल पहले नहीं क्या होगा तो छोड़ दिया, ऐसे करके छोड़ देते थे पूरा। तो फिर जब से यहाँ आए तो बोला, क्योंकि आने के लिए बोला, क्योंकि हम जब भी नहीं यहाँ आके जब नशे की बात है कि आप इतने सारे ग्रुप का मिला पुरुषार्थ का, तो वो भी एक नशा है जो यहाँ बैठने का भी हम नहीं सोच सकते थे। पहले दिन तो मना किया था, हम क्लास नहीं करा पाएंगे डर लगता। नहीं अब नहीं लेना है आप सीधा सतयुग में, 5वां जन्म नहीं लेना है, अब हो गया 4। अब 4 हो गया है। तो इसमें भी बड़ा, हम जब इंटर्नशिप चल रहे थे तभी हमने मन ने मन सोच लिया किसी को नहीं बताऊंगी, घर में 2-3 बार बोलूंगी, खाना नहीं खाऊंगी सेंटर पे, फिर क्या करेंगे, जाने ही देंगे। तो फिर वो हमारा सेंटर में जाने का बना ही नहीं कभी, कि मुझे वही था कि समर्पित होना है। और जब वापस आए तब से था, तो पापा ने स्ट्रिक्ट मना कर दिया, समर्पित होने की बात करेगी तो जाने भी नहीं दूंगा सेंटर। समर्पित होना कब दूर की बात है। तो फिर ऐसे ही यहाँ आए थे जून में नीचे सेवा में, तो भाई सब मिला, तो भाई साहब ने पता नहीं कैसे पहचान लिया, तो बोले मिले, तो मैंने बोला ऐसे किया है MBBS हो सब हुआ, तो बोला कि जरूरत है आ जाओ। तो फिर मैंने मुझे तो आना है पर घर पे, तो फिर आए थे ऊपर, तो फिर वापस बाबा को बोल के गए कि अब यहाँ आना है, तो घर से बोला तो एक दिन में मान भी गए और छुट्टी भी दे दी। तो ये 4th और लास्ट जन्म। ओम शांति।